ॐ नमः सिद्धे सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय पुकार्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते हो तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उजासते जाने निज गुण खान लब्धि सार को पाय करि कै क्षपणासार हो है प्रवचन सार सो समय सार अधिकार। निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धि सार ग्रंथ में प्रथमोपशम सम्यक की जो चर्चा की है उसके आधार से यहाँ पंचलब्धि का प्रकरण देख रहे हैं। सुबह हमने जो देखा था ना, जहाँ 110 पृष्ठ आपका हमारा 112 हिंदी में, उसके आगे जो संकलेश और विशुद्ध परिणामों के बारे में थोड़ी चर्चा की है। हमने ये बात देखी थी कि द्रव्यान योग की अपेक्षा शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग जो कहते हैं वो तो स्थूल कथन है। अपने बुद्धि में आवे ऐसे राग द्वेष जहाँ नहीं पाए जाते और स्वशुद्धात्मा के उसमें हम एकाग्र होते हैं तो कोई राग द्वेष होते हुए हमें ख्याल में नहीं आते, उसको द्रव्यानियोग शुद्धोपयोग कहता है। उस काल में भी वहाँ जीव के विशुद्ध परिणाम को चल रहे हैं, वो तो अपने ख्याल में नहीं आते, उस जीव को भी समझ में नहीं आते, परंतु केवल ज्ञानी उसको जानते हैं। और करणान योग में जब बारवा गुणस्थान होता है तभी उसको शुद्ध उपयोग कहने में आता है, क्योंकि पूर्ण रूप से वहां शुद्ध उपयोग है, वहां कोई भी कषाय नहीं है। जैसे यथाख्या चारित्र जिसको कहते हैं, ग्यारहवे में भी है अंतर्मूर्त तक, बारहवे में भी है। यहां उसके आगे के पृष्ठ पर ये कषाय शक्ति अलग बात थी और कषाय की प्रवृत्ति अलग बात होती है, उसकी भी चर्चा की थी। जैसे वहां कहते हैं कि जो व्यंतर आदि जो देव है कुतूहल स्वभाव होता है, तो किसी पर उपसर्ग करना या कोई अन्य बातें करना, ऐसी बातें करते हैं कुतूहल होता है, प्रवृत्ति अलग बात होती है, फिर भी उनकी पीत लेशा पाई जाती है, मंदता कही जाती है। ये सारी बातें यहाँ चर्चा की है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव है उनके तो कोई वहां राग द्वेष रूप ऐसे तीव्र कषाय रूप परिणाम नहीं होते हैं, मंद कषाय चलते हैं, 33 सागर तक वो तत्व चर्चा आदि करते हैं, शुक्ल लेशा है, परंतु गुणस्थान चौथा है। और कोई यहाँ पर मनुष्य है पांचवे गुणस्थान वर्ती है और युद्ध में भी गया है, तो बाह्य परिणाम कैसे दिख रहे हैं, प्रवृत्ति कैसी दिख रही है, तो प्रवृत्ति अलग बात है और उसके जो कुछ लेशा के परिणाम वो अलग बात है, वो कषाय अलग बात है। तो कषाय यानी संकलेश विशुद्धि अलग बात है और बाह्य प्रवृत्ति ये बातें अलग है। हम तो लोगों की या सामने वाले जीवों की प्रवृत्ति देखकर ही उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं होती। इसकी चर्चाएं बीच में आई है तो उसको हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे, अपना जो अदब प्रवृत्तकरण उसका प्रकरण हम बढ़ाएंगे आगे। यहाँ 112 पृष्ठ होगा आपका, अभी मैंने जो कहा उसके ऊपर का पैराग्राफ। करणान योग में परिणाम और कर्मों की अवस्था मिला, हिंदी में 115। करणान योग में परिणाम और कर्मों की अवस्था का सूक्ष्म विवेचन किया जाता है। उसके अनुसार प्रयत्न पूर्वक कोई भी उद्यम हो नहीं सकता। क्या कहते हैं? यहाँ जो सूक्ष्म विवेचन अभी हमने देखा था, अदब प्रवृत्त में क्या होता है, परिणाम इतने विशुद्धि बढ़ती है, स्थिति बंधापसरण होता है और प्रकृति बंधापसरण वो प्रायोगिक लब्धि में होता है, इत्यादि बातें हमने देखी है। परंतु क्या होता है ये बताया जाता है, उसको सुनकर वैसा पुरुषार्थ तो नहीं किया जाता है। यानी जीव को अभी उपशम करना है कि क्षय करना है, ऐसे सोच समझकर उसका वहां उसका पुरुषार्थ नहीं होता, ये बात कहना चाहते हैं। कर्णान योग में यथार्थ वस्तु स्थिति बताई जाती, जो होता है उसको बताया जाता है, उसमें आचरण की मुख्यता नहीं होती। कर्मों में जो कोई कार्य हो रहे हैं, अभी हमने देखे थे ना कर्मों में क्या क्या होता है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, तो हमें करना के नहीं करना, वो करने नहीं करने की बात नहीं, जो होता है उसको बताया जाता है, सोच समझ कर उसे कोई कर ही नहीं सकता। चरणानुयोग द्रव्यानुयोग आदि के उपदेश के अनुसार जो चलेगा उसके निमित्त से जो कार्य होना होगा वह स्वयमेव होगा। द्रव्यानुयोग के जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो तत्व विचार करेगा उसके कर्म के उपशमादि स्वयमेव होंगे। जैसे कोई कर्म का उपशमादि करना चाहे तो किस प्रकार होगा, जो स्वयं तत्वादिकों का निर्णय करने का उद्यम करेगा उसके निमित्त से सहज ही उपशमादि सम्यक तो होता है। इसलिए कर्णान योगानुसार जैसा है वैसा जान लेना, परंतु प्रवृत्ति तो बुद्धिगोचर जिससे भला होगा वैसी करना। कर्णानुयोग के माध्यम से कर्मों की कई किसी अवस्था होती है, जीव के क्या करने पर क्या होता है कर्मों में ये जान लेते हैं, परंतु प्रवृत्ति कैसी करे तो हम समझेंगे कौन सी चीजों से कर्म का बंध होता है क्या होता है, तो उस अनुराग वो प्रवृत्ति करेगा। अब आगे उस पर प्रश्न पूछते हैं, तुम पूछोगी आगे के पैराग्राफ में, यदि प्रयत्न अथवा पुरुषार्थ द्रव्यान योगानुसार तत्व जानकर तत्व निर्णय करने का ही है। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ क्या है? द्रव्यान योगों के सिद्धांत जानो और तत्व विचार और तत्व निर्णय करो, तो कर्णान योग जानना ही क्यों? सबका यही प्रश्न होता है, ये इतनी सब डिफिकल्ट बातें फिर क्यों जाननी, बिना वजह समय और शक्ति का अपव्यय क्यों करे, क्या लगता है उसमें? हाँ, ये इतनी बुद्धि लगानी उसमें, समझता नहीं है, शक्ति भी वेस्ट होती है और बुद्धि भी, समय भी। बेटियों, हमें जिसमें रुचि है ऐसे मोक्ष मार्ग का सर्वांगीण स्वरूप जानने की जिज्ञासा भी सहज ही होती है। दुनिया भर की अन्य घटनाओं को जानने का रस कम होकर सत्य स्थिति जानने का उत्साह होना स्वाभाविक है। जिन्हें क्रिकेट में रुचि है क्या उन्हें मैच किसने जीती इतना ही सुनकर समाधान होता है? अपने अपने देख लो भी, हमें जिस विषय में रुचि है तो उसका फाइनल रिजल्ट समझ में आया, क्या इससे हमें समाधान होता है? वे लोग तो दिन भर टीवी के सामने बैठकर शुरू से अंत तक मैच देखते हैं, दोबारा हाइलाइट्स देखते हैं, पुनः पुनः उसी विषय पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सुबह हम घूमने जाते हैं ना वहां पर बॉम्बे में भी, तो दूसरे भी लोग घूमते हैं तो घूमते घूमते वो ही मैच का ही विषय चलता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हाँ, 5:30 बजे सुबह सुबह मेरे जैसे किसी को प्रश्न उठता है, एक गेंद को उछालने में इतने सारे खिलाड़ी दौड़ धूप करते हैं और उन्हें देखते हुए लाखों जीव ऊपर नीचे होते हैं, वो भी अपने सोफा पर कूदते हैं, हर्ष शोक मनाते हैं, ऐसा उसमें क्या है? इस पर कोई क्रिकेट रसिक उत्तर देगा, अरसिकेश कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। यानी ये संस्कृत शब्द है कि अरसिकों को कवित्व क्या है ये सिखाना, हे भगवान मेरे नसीब में मत लिखो, ऐसा कहते हैं आगे। परंतु यहाँ तो जिसे कर्णानी योग में रस या रुचि नहीं है ऐसे जीवों को भी उन्हीं के कल्याण हेतु कहने का मन होता है, हे जीव तुम क्या कर रहे हो इसकी तुम्हें खबर नहीं है। अनादि कर्म बंधन में फंसकर निरंतर कर्म बंधन का ही कार्य तुम कर रहे हो। देखो इसमें से छूटने का मार्ग अत्यंत सरल सुलभ और सहज है। सुनो तुम तो केवल तत्व विचार आदि का कार्य करो, कर्म में ये सारे अवस्थांतर स्वयमेव होंगे, तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तुम्हारे कर्म बंधन ढीले पड़ेंगे, पूर्वबद्ध पाप कर्म शक्तिहीन होंगे, उनकी स्थिति भी घटेगी, परंतु पुण्य कर्मों की शक्ति बढ़कर तुम्हें उनका फल भी मिलता रहेगा तथा उनका भी नाश होकर तुम्हें शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सरल है, जो मोक्ष सुखमय है उसका मार्ग भी सुखमय है, आनंदमय है। यानी जीव अपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते करते सहज में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह हम कर्णानि योग के आधार से करण परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव करण परिणाम मानता है। देखो ये कहने की पद्धति है कि करण परिणाम मान ले, उसके तो वहां स्वशुद्धात्मा का लक्ष्य किया है और ये परिणाम सहज होते हैं। अर्थात जैसे नाचार्य की भाषा में कहना हो तो, जैसे नाचार्य ने लिखा है प्रवचन सार में, अध्यात्म भाषा में, यानी जो द्रव्यान युग की भाषा है अध्यात्म ग्रंथों की भाषा है वो अलग है, और कर्णान योग में उन्हीं परिणामों को अलग पद्धति से बताया जाता है, उसको कहेंगे आगम भाषा, जहां कर्म आदि की परिणाम उसके जो है उसकी अवस्थाएं बताएंगे उसको कहेंगे आगम भाषा, और जीव के परिणामों को कहना है वहां कहेंगे अध्यात्म भाषा। अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप निज शुद्धात्मा की भावना, यानी जो त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव जिसको कहते हैं नलिनी बेन, हाँ ये आपका भाव आया, यहाँ नलिनी बेन का प्रश्न था तो वो उसमें पर्याय लेने की नहीं कहाँ छोड़नी, तो हमने उनको पूछा आपके पास कितना सोना है,
10 किलो।
अच्छा तो वो सोना है उसमें कोई पर्याय होगी कि नहीं होगी, बोलो अरविंद भाई, होगी ना, क्योंकि बंगड़ी होगी, हार होगे, कान के जो कोई कुंडल होगे और अन्य कोई जो गहने होगे, कोई ना कोई उसकी अवस्था है। पर हम जब कहते हैं आपके पास कितना सोना है तो हम क्या बताते हैं, हमारे पास चार बंगड़ी है एक हार है, ऐसा कहते कि इतना तोला सोना है इसे कहेंगे हम, आप किलो में कहो, तब हम उन पर्यायों की बात नहीं कर रहे हैं, सोने को देख रहे। ऐसे ही यहाँ जब हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब कहते हैं तो वहां भले पर्याय है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो त्रिकाली एक रूप जो जीव का जीव तत्व जिसको हमने देखा था ना सात तत्वों में, उसकी बात है यहाँ पर। तो कहते निज शुद्धात्म भावना, भावना यानी उसमें एकाग्र होना, उसको कहते भावना। भावना यानी बस उसकी इच्छा करते रहना, वो भावना नहीं होती। भावना यानी उस रूप भवन, उस रूप होना। निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, स्वसंवेदन अपना संवेदन ने आत्मा, अपना अनुभव, अपना अनुभव करने वाला जो ज्ञान है उसके आगे क्या कहा, सविकल्प। हमने ज्ञानाकार की बात जब देखी थी, साकार ज्ञान उपयोग, तो दर्शन उपयोग जो है उसको अनाकार या निर्विकल्प कहते, वो भेद करके नहीं जानता, नहीं ग्रहण करता, और जो भेद यानी विशेषों को ग्रहण करता है उसको सविकल्प कहते हैं। तो केवल ज्ञान सविकल्प है क्या निर्विकल्प है नरिनी बेन? हाँ निर्विकल्प। हमने अभी क्या कहा, ज्ञान को ही सविकल्प कहते हैं क्योंकि वो भेद करके जानता है, और दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं क्योंकि वो सामान्य से ग्रहण करता है, वो राग वाला विकल्प नहीं समझना। यहाँ पर विकल्प के दो अलग अलग अर्थ होते हैं, ख्याल है?
तीन।
हाँ विकल्प का ये भी होता है ना, क्या ऑप्शन है, उसके लिए भी विकल्प शब्द यूज होता है। संवेदन ज्ञान द्वारा और आगम भाषा में करणान योग क्या कहा कहेगा उसी को अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इन तीन करण परिणामों द्वारा आत्मा में लीन होता है, एकाग्र होता है। यानी जो जीव पहले चार लब्धि होती है और बाद में करण लब्धि मानता है तो द्रव्यानुयोग उसको क्या कहेंगे, ये तो शुद्धोपयोग में है। और करणानुयोग क्या कहेगा, तीन करण परिणाम मान ले, इतना दोनों में डिफरेंस है। अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। करण लब्धि वाले जीव का बुद्धिपूर्वक इतना ही उद्यम होता है, यानी वो जीव क्या करता है, उसका पुरुषार्थ प्रयत्न क्या होता है कि वह तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। किसमें, तत्व विचार में। निर्णय होते होते वो तत्व विचार करते करते निर्णय हो जाता है उसका, तो उसमें मग्न हो जाता है। उसके कारण प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं और तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़ी ही काल में उसे तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त तो होता है। और हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं और फिर उपयोग को कैसे अंदर खींच ले जाना, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करते। उसकी भी, उन जीवों की भी इच्छा तो ऐसी है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, तो ध्यान की भी प्रैक्टिस करते, क्यों, मन को एकाग्र करना है। परंतु यहाँ सहज में तत्व विचार के काल में ये एकाग्रता भी हो जाती है और अपने आत्मा को वो जीव जान लेता है। इन परिणामों की तारतम्यता केवल ज्ञानी जानते हैं, उनका निरूपण करणानी योग में किया। अब हम एक एक करण परिणाम का स्वरूप विस्तार से देखेंगे। हमने तीन करण परिणाम देखे, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। तत्व विचार और तत्व निर्णय में उपयोग लगता है तब जीव के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते जाते हैं। प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती, हमने देखा था, हमने विशुद्ध लब्धि में विशुद्धि बढ़ने की बात की थी और यहाँ करण लब्धि में भी विशुद्धि कही जाती है। तो पहले जो विशुद्धि कही थी उसमें कौन सी बात थी कि सातान वेदनीय आदि प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणामों को विशुद्ध परिणाम कहा था। वो तो शुभ भाव, धर्मानुराग रूप बुद्धि कि वह स्वाध्याय चल रहा है, हम जाए मंदिर में जाए, जो कोई वहां स्वाध्याय चल रहा है उसको सुनने की वृत्ति हुई, इतना ही शुभ परिणाम हुआ था वहां पर। अब यहां जो विशुद्धि है वो तत्वज्ञान संबंधी निर्मलता जानना, क्योंकि वहां तो अभी उसको देशना नहीं मिली थी, अब उसने तत्व भी सुने हैं, ये सही है ऐसे उसको श्रद्धान हुआ है और उस पर वो तत्व विचार कर रहा है। तो यहां की विशुद्धि तत्वज्ञान संबंधी निर्मलता समझना, श्रद्धा संबंधी निर्मलता जानना। यहां करण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्तरोत्तर मंद, मंदतर, मंदतम होते जाते हैं, उनकी अपेक्षा विशुद्धि समझना। क्योंकि अभी ये करण लब्धि होते 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 इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अविभाग प्रतिच्छेद है उसके, वो घटते चले जाते हैं और घटकर उदय में आते हैं। या आगे के पैराग्राफ में यही बताया है कि हमने जो चारों गति में देखा था कि चारों ही गति वाले जीवों को प्रथमोक्षम सम्यक तो होता है। मनुष्य और तिरेंचों में तो शुभ लेशा में होता है। स्वर्गों में ऐसा नियम है कि उनकी अपनी अपनी जो लेशा है वही रहती है, जैसे नीचे के स्वर्गों में पीत लेशा है, उसके ऊपर वाले तीसरे स्वर्ग से लेकर पद्म लेशा है, ग्रेवेक में शुक्ल लेशा है, वैसे ही नरकों में अपने अपने नरक में अपनी अपनी लेशा होती है। तो उस लेशा में परिणाम मंदता की ओर जाते हैं, उसी को वहां विशुद्धि कहने में आता है। अब उसके एक पैराग्राफ आगे, अधः प्रवृत्त करण में मिला 115 में, अधः प्रवृत्त करण में ऊपर और नीचे के समयों में समान परिणाम होते हैं, उसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं। उसका स्वरूप अब हम देखेंगे। ये हमने पहले, मैंने सुबह बता भी बता था कि कमेंट्री करते समय पहले में खेली हुई जो मैच होती है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो अभी पहले ओवर में इतने, इस साल में इसने इतने रन्स निकाले थे, उस फला साल में उसने इतने रन्स निकाले थे, तो एक कंपैरेटिव बताया जाता है। और भूतकाल के मैचों से उसकी तुलना की जाती है। यहाँ केवली भगवान तो भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य काल के तीनों काल के जीवों के परिणाम को जानते हैं, तो तीनों काल की अपेक्षा यहाँ वर्णन किया जाता है। हमने देखा था कि जो अलग अलग जीवों में जो अलग अलग परिणाम है वो कितने वैरायटी है परिणामों की, अधः प्रवृत्त करण में आने वाले जीवों के परिणामों की वैरायटी कितने है, असंख्यात लोग, असंख्यात लोग। अब यहाँ आगे एक पैराग्राफ छोड़कर आगे, अधः प्रवृत्त करण के अंतर्मूर्त काल के मिला प्रति समय में परिणामों की संख्या विशिष्ट होती है। जैसे उसमें जो शुरू किए हैं अभी पहला समय है, तो वहां परिणाम जो अलग अलग परिणाम होंगे, कोई एक नंबर का परिणाम, दो नंबर का परिणाम, तीन नंबर का परिणाम, चार नंबर का परिणाम। ये नंबर क्यों डाले, क्योंकि उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशुद्धि है स्टार्टिंग पॉइंट में, तो उनकी पर्टिकुलर संख्या होगी वहां पर। उसमें पहले समय में जितने परिणाम हो सकते हैं उनसे दूसरे समय में विशुद्धि तो अनंत गुणा बढ़ती ही है, परंतु परिणामों की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होती है। मान लेते हैं पहले समय में, हम अभी छोटी संख्या लेंगे, 162 अलग अलग परिणाम है वैरायटीज, तो वो सभी जीवों की अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ती है, परंतु दूसरे समय में उसमें 166 अलग अलग परिणाम हो जाते हैं, क्योंकि किसी की विशुद्धि कितनी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है उसकी अपेक्षा से। तीसरे समय में और चार की वृद्धि होगी, 170 हो जाएंगे इस तरह से, तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरे समय में भी उसमें और ही वृद्धि होती है। ये जो समान समान वृद्धि होती है परिणामों की संख्या में, वैरायटीज में, उसको चय कहेंगे। जो इक्वल डिफरेंस होता है ना कहीं भी, अभी तो ये परिणामों की बात है, कहीं भी कर्णान योग में जहां गणित आदि की बात समझाते हैं और जहां फिक्स्ड उसमें पर्टिकुलर वृद्धि होती चली जाती है, फिक्स डिफरेंस, उसको चय कहेंगे। अब इसको संख्या लेकर समझाएंगे। देखो नीचे जहां लिखा है ना, अंक संदृष्टि इस प्रकार है, मिला ना आपको। अंक संदृष्टि का अर्थ क्या है, काल्पनिक संख्या देकर समझाया जाता है। हमने तो देखा है कि अध प्रवृत्त का काल तो अंतर्मूर्त यानी असंख्यात समय है, और उसमें परिणामों की वेरिएशंस असंख्यात लोक प्रमाण है। ऐसा कहने से हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसलिए अभी काल्पनिक छोटी संख्याएं लेकर समझाएंगे। तो अध प्रवृत्त करण का जो अंतर्मूर्त है हम मानेंगे 16 समय। त्रिकालवर्ती अनंत जीवों के अधकरण परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, हम मानेंगे 3072। सभी 16 समयों में कितने कितने अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं उसको मानेंगे 3072। पहले समय में अलग अलग जीवों की विशुद्धि अलग अलग होती है, सबसे जघन्य विशुद्धि को हम पहले क्रमांक का परिणाम कहेंगे। विशुद्धि कितनी है अभी जो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे हम, उसको हम कहेंगे ये पहले नंबर का परिणाम है, मिनिमम पॉसिबल विशुद्धि वाला। तीन काल के जीवों ने जितने अध प्रवृत्त करण में पहले समय में आए हैं वहां मिनिमम पॉसिबल विशुद्धि किसी जीव के होगी, उसको हमने एक नंबर का परिणाम कहा। उससे बढ़कर थोड़ी विशुद्धि है उसको दो नंबर का कहा, उससे अधिक विशुद्धि वाले को तीन नंबर कहा, उससे ज्यादा विशुद्धि को चार नंबर कहा। ऐसे पहले समय में कितने पॉसिबल है समय परिणाम जो केवली ने देखे हैं, तो यहां हमने संख्या ली 162 समझने के लिए। एक्चुअल में कितने देखे थे, असंख्यात लोग। तो ये परिणामों को हम चार ग्रुप बनाएंगे, परंतु चार ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं कि एक एक ग्रुप में एक एक से बढ़कर होगा। क्या करना है, एक एक बढ़ाना है, और हमें चार ग्रुप करना है। तो कैसे कैसे हो गए, तो 39, 40, 41, 42, इनकी टोटल कितनी होती है?
162.
देखो ये निकालना आगे का पेज 122 है मेरे में, एक फुल पेज में यहाँ एक टेबल बनाया है. 119 पर है, कब कहाँ पर है, फुल पेज
एक,
हाँ 119 ये टेबल नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है. ये टेबल कैसे देखना उसको बता रहे, कैसा पढ़ना, नीचे से ऊपर, हमेशा पहला समय नीचे होता है, 16वां समय यहाँ ऊपर होगा. तो नीचे की लाइन में पढ़ना है, वहाँ हेडिंग है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में समय बताया है और उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 16 तक बताया है. दूसरे लाइन में परिणामों की संख्या बताएंगे, पहले समय में 162 है, दूसरे समय में 166 है, तीसरे समय में 170 है, चार चार से बढ़ते हुए 16वें समय में 222 परिणाम है. मिल गया ना? हाँ, क्योंकि ऐसा टेबल देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा. आपने बोला ना क्या टेबल लिखे, हमको कुछ पता नहीं चलता है. अभी इसके चार 162 के हमके चार ग्रुप बनाने हैं. ऐसे चार ग्रुप बनाने हैं कि पहले से दूसरे में एक ज्यादा है, दूसरे से तीसरे में एक ज्यादा है, तीसरे से चौथे में एक ज्यादा है. तो पहले में 1 से लेकर 39 तक हमने पहला नंबर किसको दिया था, मिनिमम पॉसिबल विशुद्धि को पहला नंबर कहा, उससे अधिक विशुद्धि को दूसरा नंबर, उससे अधिक विशुद्धि को तीसरा नंबर. इस तरह से 1 से लेकर 39 तक जितने अलग अलग विशुद्धि के वैरायटीज है उसका एक ग्रुप बनाया. दूसरे ग्रुप में 40 लिखे हैं. 40 का अर्थ क्या लिखना है वहां पर, 40th नंबर से लेकर
40
यानी 40वें नंबर से लेकर 79 नंबर तक, यह है दूसरा ग्रुप. उसकी संख्या कितनी होती है, 40. देखो ऐसा गिनना है, 40, 41, 42, 43, 44 ऐसे 79 तक 40 हो जाते हैं. यानी 40वें नंबर को उसको भी गिनना है और 79 वाले को भी गिनना है, दोनों को गिनना है, तो उनकी संख्या 40 हो जाती है. उसके आगे 41 लिखे है. 41 का अर्थ होता है 88 से लेकर 128 तक, फ्रॉम नंबर 80 टू नंबर 120. 80 को भी गिनना और 120 को भी गिनना, 41 हो जाते हैं. और उसके पश्चात जो 42 लिखा है उसका अर्थ है 121 से लेकर 162 तक के परिणाम. टोटल वैरायटी 162 हमने देखी थी. देखो यही दो पेज पहले निकालना, हिंदी में 120 पर
117 में आएंगे.
एक छोटे दो लाइन का टेबल है, 118 में है. हाँ, टेबल थोड़ा आगे पीछे किया है. हाँ देखो वहां समझाया है, नीचे से इसको भी पढ़ना है. पहले कॉलम है समय, दूसरे कॉलम में लिखा है कुल परिणाम और उसके आगे लिखा है प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड. यही बात यहां लिखी है. पहले समय में टोटल परिणाम है 162. उसके हमने चार ग्रुप ऐसे बनाए कि पहले से दूसरे में एक ज्यादा है, उससे उसमें एक ज्यादा है, इस तरह से. तो पहले 39 का अर्थ क्या है, फर्स्ट से 39th तक. उसके 40 का अर्थ है 40वें परिणाम से लेकर 79 वाला परिणाम वहां तक. उसके आगे 80वें परिणाम से 120वें परिणाम तक 41 होते हैं टोटल, और 121 से 162वें परिणाम तक 42 होते हैं. अब इन सब के परिणामों की अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ेगी. तो यहां जो 1 से 39 थे वो परिणाम कैसे हुए बढ़कर, 40 से लेकर जो 79 वाले परिणाम थे ना, उन जैसे इनकी विशुद्धि हुई अनंत गुना बढ़कर. और जो दूसरा ग्रुप था उसके कैसे हुए, वो 40 से 121 तक, और तीसरे के बढ़कर इस तरह से. अब ये पहले वाला टेबल फिर निकालो.
तो ये आपने 162
आर्बिट्री नंबर है. देखो यहां हमने दूसरा समय देखना है, नीचे से दूसरा समय. अभी वहां परिणाम टोटल 166 हो गए हैं. वो 1 से 39 तक के जो नंबर थे ना, यानी विशुद्धि वाले, उन सब की विशुद्धि बढ़कर 40 से 80 जैसे 79 जैसे हो गई है, तो 39 थे वो 40 हो गए परिणाम, फिर 40 थे वो 41, वो 41 थे वो 42, और 42 थे वो 43। अभी वो क्रम से ऐसे बढ़ेंगे तो आपको ये टेबल देखकर ख्याल में आएगा। देखो चौथे समय में जरा देखना, चौथे समय का पहला खंड कितना है, 42 वाला, यानी 121 से 162 के जैसे परिणाम किसी जीव के हो गए चौथे समय में, वे ही परिणाम अन्य जीव के तीसरे समय में है, नीचे नीचे के कॉलम में मिला,
तीन नंबर
वो 42 42 आप नीचे तक देखते जाओ, अच्छी तिरछी लाइन आपको दिखेगी। देखो प्रथम खंड में जहां 42 थे चौथे समय में, दूसरे खंड में 42 है तीसरे समय में, बराबर, और तृतीय खंड में 42 है दूसरे समय में, और चतुर्थ खंड में 42 है पहले समय में। तो ये 42 वाले जो परिणाम है जो हमने देखे थे 121 से 162 वाले परिणाम, वो जैसे किसी के पहले समय में विशुद्धि है, ऐसी विशुद्धि किसी के चौथे समय में है। ऐसे ऊपर से नीचे जो समानता है वो ऊपर कहीं भी आप देख सकते हैं। ये 54 54 वाले भी, लास्ट लाइन वाली समानता भी है, कहीं भी ले लो आप, ऊपर और नीचे की समानता हो सकती है। हमें इस टेबल के डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही देखना है ऊपर और नीचे की कैसे समानता हो सकती है। ये जो ऊपर और नीचे की समानता है उसको शब्द है अनुकृष्टि, इतना ही इसमें समझना है। ख्याल में आए इसकी बात, हाँ? थोड़ी डिफिकल्ट है, देखो अभी हम देखें या पढ़ेंगे। अभी आपको पहले तो टेबल बताया ये, फिर हम जहां से हमने छोड़ा था अंक संदृष्टि वहां तक आते हैं। तो वहां हमने पढ़ा पहले समय में संभवते परिणाम अंक संदृष्टि में 162 है, मिला क्या, 118 मेरे में है, आप में दो तीन, 116। इन परिणामों के चार खंड करेंगे, चार ग्रुप्स बनाएंगे, परंतु पहले ग्रुप से दूसरे में एक परिणाम अधिक होगा, जैसे हमने 39 के बदले 40 लिया था, दूसरे से तीसरे में एक अधिक, यानी वहां दो अधिक हुए ना, टोटल दो अधिक, पहले में 39 हुए, दूसरे में 39+1, और तीसरे में 39+2, और चौथे में 39+3, +1 +2 +3 कितने हुए, सब में कॉमन 39 रखो, दूसरे में एक ज्यादा, तीसरे में और एक ज्यादा, यानी टोटल दो ज्यादा है, हाँ, तीसरे में और तीन ज्यादा, तो ज्यादा का प्रमाण कितना हुआ, एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा, छह ज्यादा हुए। तो ये 39 कैसे निकाला, तीन बार बढ़े ना, एक एक से तीन बार बढ़े, तो 1+2+3 छह हुए, टोटल छह बढ़े, 162 में से छह कम कर दिए, कितने, 156 आए, 156 डिवाइडेड बाय 4, 39 आए, तो 39 को कॉमन रखा चार बार, पहले 39 में कुछ नहीं मिलाया, दूसरे 39 में एक मिलाया तो 40 हुए, यहां दो मिलाए तो 41 हुए, और यहां तीन मिलाए तो 42 हो गए। ये चार कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, ये बात ख्याल में आई ना, अभी हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये 39 है, वो क्या है, वो
कुछ नहीं, देयर नंबर, वेरिएशन ऑफ परिणाम, वेरिएशन ऑफ परिणाम, इसको परिणामों की संख्या कहते हैं। विशुद्धि अलग बात है, मिनिमम विशुद्धि को नंबर 1 का परिणाम कहा, थोड़ी ज्यादा विशुद्धि को नंबर 2 का परिणाम कहा, और थोड़ी विशुद्धि ज्यादा है उसको नंबर 3 का परिणाम कहा। ये टोटल ऐसे परिणाम कितने हुए वेरिएशन, तो 39 हुए। दूसरे ग्रुप में वेरिएशंस कितने हुए, 40 हुए, पर वो नंबर 40 से लेकर नंबर 79 तक के परिणाम थे। हाँ, परिणामों के वेरिएशंस कितने, उसको कहेंगे परिणामों की संख्या, और उसमें विशुद्धि कितनी है उसको कहेंगे विशुद्धि।
ये तीन काल के जो लोग हैं, जीव जिन्होंने उपशम समेत तो स्टार्ट किया है, यानी करण अधपरवर्त करण चालू किया है, उसमें जो परिणामों की विविधता है वो इन आंकड़ों के द्वारा हमको समझाने की कोशिश की।
अब यहां जो अभी हमने देखे थे ना नंबर वन का परिणाम, टू का परिणाम, थ्री का परिणाम, तो पहला नंबर की विशुद्धि से दूसरा नंबर की विशुद्धि ज्यादा है, दूसरे से तीसरी ज्यादा है, परंतु पहले से 39 एक ही ग्रुप के हमने देखा मिनिमम और मैक्सिमम, तो पहला नंबर और 39वां नंबर उसमें पहले से 39 वाला अनंत गुना ज्यादा है। अब 39 से 40वां आगे के ग्रुप वाला जघन्य है वो उससे अनंत गुना ज्यादा है, फिर आगे थोड़ा ज्यादा करते करते 40 से लेकर 79 वाला अनंत गुना है, और 79 से 80 वाला वो उससे अनंत गुना है। अब इसमें बहुत डिटेल्स है, हमें तो इतना ही समझना है कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, क्योंकि हमने देखा था जो पहले समय में 1 to 39 वाले थे दूसरे समय में वे ही परिणाम 40 to 79 जैसे होने वाले हैं, यानी वो अपने से अनंत गुना विशुद्धि हो गए। तीसरे समय में वे ही 41 जैसे हो गए, फिर 42 जैसे हो जाएंगे, अपने अपने परिणाम एक एक समय में अनंत गुणे बढ़ते हैं।
हर समय में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही ना,
अभी जो मैंने बताया था ना यही बात आगे है। हाँ अभी आगे
आप जब परिणाम से वेरिएशन बोलते हैं तो वेरिएशन इन व्हाट सेंस?
विशुद्धि,
ओनली विशुद्धि,
ओनली विशुद्धि, और उनकी संख्या कितनी होगी? तो अभी हमने इसकी संख्या तो यहाँ छोटी है, दिस इज अ आपने जैसे कहे ना ये आर्बिट्रेरी फिगर्स है, तो जो 162 लिए दूसरे समय में कितने होते हैं अनंत गुना बढ़कर 166 होते हैं, तीसरे समय में कितने 170 होते हैं, इन टोटल 16 समयों की संख्या की टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3072 हो जाएगी, जिसको हमने असंख्यात लोक कहा था। तो ये असंख्यात लोक हम नहीं समझ सकते, इसलिए इसको कहते संदृष्टि करके समझाना। अभी हम आते हैं अपने जो टेबल आपने देखा था 129 उसके आगे का पेज, टेबल के आगे, शायद गुजराती में टेबल एडजस्ट करने के लिए थोड़ा आगे पीछे का पैराग्राफ देखना, मैं बताती हूँ। देखो मूल ग्रंथ पढ़ने में आसानी हो, मिला है अभी वो टेबल के
119 के आगे,
टेबल के
18 होगा,
पूर्व में होगा या पश्चात में होगा?
119 था ना,
ये बड़ा टेबल है ना, एकदम बड़ा टेबल,
इसके आगे वाला पेज, हाँ बस राइट साइड में,
शायद उसके पहले होगा, क्योंकि क्या है टेबल छापने के लिए जो फुल पेज था चाहिए था, इसलिए वो मैटर आगे पीछे है, मैटर तो वही है। मूल ग्रंथ में पढ़ने में आसानी हो इसलिए ये शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ, अभी ये आगे के छोड़ दो। हाँ देखो क्या लिखा है, गत 9 सालों में हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के सर्व भाग तथा अर्थ संदृष्टि अधिकार का अनेक बार अभ्यास किया, मैंने उसे पढ़ाया भी, परंतु अपनी मंद बुद्धि से उसका अर्थ स्पष्ट होते होते बहुत कठिनाई पड़ी थी। मैं नहीं चाहती कि उसी कठिनता के कारण तुम ग्रंथों का पढ़ना ही कहीं छोड़ दो, इसलिए कई शब्द जानबूझकर बता रही हूँ, यानी भले यहाँ इसका अर्थ नहीं समझ, 120 पेज के ऊपर यहाँ अंक संदृष्टि में 1 से 39 तक के परिणाम, तक के परिणाम का ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा 39th तक के परिणाम अधिकाधिक विशुद्ध होते हैं ऐसा कहा है, परंतु यथार्थ में एक एक खंड के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं क्या? यह तो 39 ही बताए, एक्चुअल में कितने असंख्यात लोक, और असंख्यात लोक से बढ़कर भी असंख्यात लोक ही रहेंगे, और सबकी टोटल 16 समयों की यहाँ कही है, वहां असंख्यात समयों की भी टोटल असंख्यात लोक ही कहेंगे। हर बार असंख्यात लोक कहने से कोई समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ 39, 40, 41 लेकर समझाए हैं। अब उसमें भी वो षट्स्थान पतित वृद्धि के बहुत सारे वेरिएशन से, अभी हम उस पैराग्राफ को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। नीचे के तथा ऊपर के समयों के परिणामों की विशुद्धि तथा संख्या, विशुद्धि के अर्थ होता है उसमें कितनी विशुद्धि बढ़ रही है, और संख्या का अर्थ क्या है? वेरिएशंस, वेरिएशंस ऑफ विशुद्धि, उसको संख्या कहा, और विशुद्धि तो हम समझ सकते हैं, उसमें समानता हो सकती है इसे ही अनुपृष्टि रचना कहते हैं। ध्यान रखना, यह समानता भिन्न भिन्न अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा बताई गई है, ये मूल में बात ख्याल में रखना है। ये तीनों ही करण परिणाम और उनके नाम ऐसे क्यों अटपटे पड़े? अलग अलग जीवों के परिणामों में समानता है या असमानता? कोई ऊपर के समय का परिणाम और नीचे का समय परिणाम अन्य अन्य जीवों का, भिन्न भिन्न जीवों का समान हो सकता है, इसलिए यहाँ अधप प्रवृत्त करण कहा। एक ही जीव की अपेक्षा प्रति समय विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है तथा एक जीव का एक समय में एक परिणाम होगा। ये तो आसान है ना समझना। यहाँ हमने 16 समय माने हैं, तो किसी जीव का एक समय में एक ही परिणाम होगा, दूसरे समय में क्या होगा, वो परिणाम अनंत गुणा बढ़ जाएगा, तीसरे समय वो विशुद्धि और अनंत गुणा बढ़ेगी, चौथे समय और अनंत गुणा बढ़ेगी, हमें इतना ही समझना है।
करना नहीं है।
हाँ, जो नहीं समझता उसको सुनना, पहली बार है आपका तो। अरे हमने तो 500 बार पढ़ा है फिर भी नहीं समझता। ये अदब प्रवृत्त करण में हमने 4 आवश्यक देखे थे, पहले पढ़े थे, सुबह पढ़े थे ना हमने, कौन कौन से? समय समय प्रति अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती है, जीव के पहले समय से दूसरे समय में विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है, तीसरे समय में उससे भी अनंत गुणा, इस तरह अंतर्मूर्त काल तक विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती जाती है। बस ये पहला आवश्यक। दूसरा, स्थिति बंधापसरण। इसका स्वरूप तो हमने प्रायोगिक लब्धि में देखा था, परंतु यहाँ अन्य घटते प्रमाण को लिए नया स्थितिबंध होता है। क्या कहते हैं? वहां भी हमने प्रमाण घटता गया था वो देखा था, परंतु यहाँ का प्रमाण और घटता है, यहाँ की विशुद्धि और ज्यादा है, तो यहाँ स्थितिबंध का जो प्रमाण है वो और घटता चला जाता है, और ऐसे हजारों स्थितिबंधापसरण होते हैं। स्थितिबंध में हर बार पल्ले के संख्यात्वे भाग इतनी घट होती है, इसके कारण क्या होगा? इसे अभी हमने यहाँ जो 16 समय लिए थे वहां तो असंख्यात समय है, तो एक अंतर्मूर्त में और छोटे छोटे अंतर्मूर्त हजारों हो गए, और हर बार स्थिति घटती चली जाती है, तो अदब प्रवृत्ति के स्टार्टिंग में जितना स्थितिबंध होता था उसके अंत में स्थितिबंध बहुत कम रह जाएगा। इतनी बात यहाँ बताते हैं, यानी शुरू में जितना स्थितिबंध होता था उसके भी संख्यात्वे भाग प्रमाण अंत में होगा। आपने यह भी सुना होगा, कोई जीव प्रथम ऑप्शन समत्व के साथ पहले से चौथे में जाता है, कोई पहले से पांचवें में जाता है, और कोई पहले से डायरेक्ट सातवें में भी जा सकता है, जितनी जिसकी विशुद्धि होगी। तो जो पांचवें में और सातवें में जाने वाला है उसके स्थितिबंध और घटता है, इतना ही यहां बताना है। तीसरा पॉइंट, प्रशस्त प्रकृतियों में, ये सब हमने पढ़े थे पहले, आवश्यक पढ़े थे ना, प्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुणा बढ़ता ऐसा चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है। चतुस्थान यानी कौन से? प्रशस्त प्रकृतियों के 4 स्थान, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, और वो भी प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता है। स्थिति बंध तो सातों ही प्रकृतियों में घटता है, आयु में कुछ नहीं होता, सातों ही प्रकृति, वो प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, उसमें स्थिति का बंध घटता चला जाता है, परंतु अनुभाग बंध प्रशस्त में बढ़ता है और अप्रशस्त में घटता है। प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग अपेक्षा 4 प्रकार बताए थे, याद है? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। अधः प्रवृत्तकरण की बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ बंधता है, जो नया बंध हो रहा है प्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुणा बढ़ता हुआ बंधता है, जिसमें चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट, अप्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुणा घटता अनुभाग बंध होता है। जो कोई वहां अप्रशस्त प्रकृतियां बनती होगी, सभी तो नहीं बन रही, बहुत सारी तो बंधना ही रुक गई है, फिर भी जो कोई बन रही है, देखो अभी मिथ्यात्व का बंध रुका नहीं है,
नहीं।
अनंतान मध्य का बंध रुका नहीं है, ख्याल है ना। अन्य भी मोहनीय का बंध हो रहा है, मोहनी की किसी भी ज्ञानावरण वगैरह किसी का बंध अभी रुका नहीं है। उनमें अभी बंध कैसा हो रहा है, अनंत गुणा घटता बंध हो रहा है, नया बंध अनंत गुणा घटता हुआ बंध रहा है। वह भी द्विस्थानगत होता है, लता और दारू भाग रूप होता है। अब ये तो हो गई अध प्रवृत्तकरण की बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ेंगे अभी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। देखो तुमने लिखा है, शुरू में पढ़ते हैं, अधप्रवृत्तकरण की बढ़ती हुई विशुद्धि के समान हमारी जिज्ञासा भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अब अपूर्वकरण संबंधी अपूर्व बातें जानने के लिए हम उत्सुक हैं। यह उचित ही है, आत्मार्थी जीवों को चारों अनुयोगों के अभ्यास की रुचि होती है। कर्णानुयोग संबंधी अरुचि जिनवानी के प्रति अरुचि भाव दर्शाती है। अब वो पैराग्राफ छोड़ दो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अनेक लोगों के मन में सवाल उठता है, मिला ना, कर्णानुयोग की इतनी सूक्ष्म बातें जाने बिना भी सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, तो उसमें क्यों उलझना। सिर्फ द्रव्यानियोग के अभ्यास से हम सम्यक तो प्राप्त कर लेंगे। सम्यक तो प्राप्त कर लेना तो हमारा आद्य कर्तव्य है। द्रव्यानियोग तो कार्यकारी है ही, परंतु कर्णानियोग के सूक्ष्म वर्णन से द्रव्यानियोग के सिद्धांतों को पुष्टि मिलती है, हमारे ज्ञान श्रद्धान में दृढ़ता आती है। बिल्कुल, ये कितने ठोक बजाकर हमें पता चलता है कि तत्व का अभ्यास और तत्व विचार करने मात्र से ही सम्यक तो होता है। उससे ही वो जो कोई ध्यान वगैरह बात होनी है, उपयोग आत्मा को पकड़ना है, वो सहज सब कुछ हो जाता है। अपना अभी कर्तव्य क्या है, तत्व विचार। हमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की रुचि है, अपने शुद्धात्मा की रुचि है, तो उसके संबंध में सर्वांगीण जानकारी हासिल करने में भी उतनी ही रुचि हो जाती है। ये करने पड़ते हैं उसकी बात नहीं है। अभी ये तो पहले हमने क्रिकेट की बात देखी थी, उसको हम आगे बढ़ेंगे। अब अपूर्वकरण संबंधी चर्चा करेंगे। मेरे में 126 पृष्ठ है, 123। यहां भी परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती ही रहती है। ये कब से शुरू हुआ था, अधप्रवृत्तकरण से ही विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ रही है, यहां भी वो अनंत गुणा बढ़ती रहती है। उस कारण अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, क्योंकि अभी तक इतनी विशुद्धि नहीं हुई थी ना। ऐसी विशुद्धि यानी मंद कषाय, यानी पुण्य परिणाम है अभी, ये अभी शुद्ध परिणाम नहीं हुए हैं। तो ऐसे शुद्ध परिणाम, ऐसे शुभ परिणाम पूर्व में कभी नहीं हुए थे। ये काहे से हो रहे, तत्व विचार से। अन्य किसी भी अन्य व्रतादिकों से ऐसा पुण्य परिणाम नहीं होता है। तो ये अपूर्व अपूर्ण परिणाम होते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, पहले ऊपर और नीचे के समयों में समानता हो सकती थी परिणामों की, अब यहां ऐसी समानता नहीं पाई जाएगी। नीचे के और ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम कभी भी सदृश नहीं हो सकते, यानी जिसको हमने पहले अनुकृष्टि रचना कही थी वो यहां नहीं होगी। भिन्न समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, एक सदृश नहीं होते, यानी एक समय में परिणामों में वेरिएशन हो सकती है अलग अलग जीवों के, परंतु पहले समय का उत्कृष्ट परिणाम भी विशुद्धि जो होगी उससे दूसरे समय का जघन्य विशुद्ध परिणाम भी अनंत गुना ज्यादा होगा। क्या कहा,
कोई भी जीव का
किसी भी जीव का पहले समय में जो कोई जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो कोई वेरिएशन है ना, पहले नंबर से लेकर अंत के नंबर तक मान लेते वहां 1000 अलग अलग वेरिएशन है, तो पहला लेकर 1000वां है उससे ऊपर के दूसरे समय में जो मिनिमम वाला जो है वो भी उससे अनंत गुना विशुद्ध होगा ही। ये बात यहां महत्व की है, परंतु एक समय में वेरिएशन हो सकते हैं। आगे अनिवृत्तिकरण में जाएंगे तो प्रत्येक समय में एक ही परिणाम, उसमें वेरिएशन नहीं। ये तीन जो स्टेप्स है उसमें यही वेरिएशन है। अधः प्रवृत्त में नीचे ऊपर समानता हो सकती है, अपूर्वकरण में एक ही समय में वेरिएशन हो सकता है, समानता भी हो सकती है, परंतु एक समय से दूसरे समय का वो कभी भी मैच नहीं होगा। ये बात यहां चल रही है अभी। भिन्न समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम भिन्न ही होते, एक सदृश नहीं, परंतु एक ही समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश यानी समान हो सकते हैं अथवा असदृश यानी असमान भी हो सकते हैं। एक ही समय में त्रिकालवर्ती अनंत जीवों की अपेक्षा जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक प्रकार की विशुद्धि संभव थी है, यानी विशुद्धि के अनेक वेरिएशन वहां हो सकते हैं। किसमें? एक ही समय में। अधः प्रवृत्तकरण के अंत समय में जितने भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम थे उसमें से एक एक परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ के परिणाम कितने हो जाते हैं? असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक। हम उसको अभी भूलकर आगे बढ़ेंगे। प्रथम समय में परिणामों के जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद पाए जाते हैं, उसमें जघन्य विशुद्धि से उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुना होती है। किसी में एक ही समय की जो रेंज है उसमें जघन्य से उत्कृष्ट अनेक वेरिएशंस है, जघन्य से उत्कृष्ट है वो अनंत गुना है। प्रथम समय के परिणामों की यह विवक्षित रेंज होगी, मर्यादा होगी, परंतु दूसरे समय के परिणामों की जघन्य विशुद्धि भी, यानी दूसरे पहले समय का जो मैक्सिमम है उससे दूसरे समय का मिनिमम भी अनंत गुना ज्यादा होगा। ख्याल आता है इसमें? हाँ। कि दूसरे समय के परिणामों की अपनी अपनी विवक्षित रेंज होगी, द्वितीय समय के परिणाम प्रथम समय के किसी भी परिणाम से मिलते नहीं है, अपूर्व अपूर्व होते हैं। इस तरह प्रति समय के परिणामों की विशुद्धि अनंत गुना होती है, और उसमें भी संख्या में भी जो है, यानी वेरिएशंस जो है उसकी संख्या उसमें भी वो बढ़ती चली जाती है। अब इसके लिए भी एक टेबल यहाँ बनाया है, 128 पृष्ठ है मेरे में, 125 है। हाँ, अब यहाँ अलग संख्याएं ली है। देखो यह भी टेबल नीचे से ऊपर पढ़ना है, ऊपर वाला टेबल। पहले कॉलम में समय बताए हैं, अधः प्रवृत्त में हमने कितने समय देखे थे? 16 देखे थे ना, मान लिए थे हमने। हमने देखा है कि अधः प्रवृत्त से अपूर्वकरण छोटा होता है अंतर्मूर्त। अब यहाँ हमने 8 समय लिए, तो पहले कॉलम में 8 समय बताया है नीचे से ऊपर तक। दूसरे में प्रत्येक समय में कितने कितने परिणाम होते हैं, तो पहले समय में मान लिए 456 परिणाम होते हैं, यानी वो जघन्य परिणाम है एक नंबर का और उत्कृष्ट परिणाम है 456 नंबर का। तो पहले से 456वां परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। दूसरे समय में जो पहले नंबर का परिणाम था उसकी विशुद्धि बढ़कर वो 457 नंबर की हो जाती है, परंतु ये जो 457 है ना वो 456 से अनंत गुणा विशुद्ध है, और 457 से लेकर 928 तक इनकी अगर हम गिनती करेंगे तो कितने परिणाम है अलग अलग, जैसे 457 नंबर का, 458 नंबर का, 459 नंबर का, ऐसे सब टोटल कितने हैं? 472 है। ऐसे ही ऊपर के परिणाम आठवें समय तक समझना है। अब हम आते हैं अपने प्रीवियस पृष्ठ पर। यहां पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हमने अभी जो परिणामों की वेरिएशंस देखी है, ये टेबल ही देखना आप। पहले समय में एक नंबर का परिणाम है, दो नंबर का, तीन नंबर का, ऐसे 456 तक पहले नंबर में अलग अलग वेरिएशंस है विशुद्धि के, तो उसमें कितने ही जीवों के एक नंबर वाले परिणाम हो गए? अनंत जीव है ना, कितने ही जीवों के मान लेते 10वां नंबर वाला परिणाम होगा, कितने उनका ही 456 वाला होगा। तो ये जघन्य से लेकर अनंत गुणा वाला वो परिणाम हो सकता है, परंतु पहले की जो रेंज है ऐसी विशुद्धि किसी भी दूसरे समय में नहीं है। वो कितनी है? अनंत गुणा ज्यादा है। पहले समय का जो मैक्सिमम है 456 नंबर का, उससे दूसरे समय का जो जघन्य है 457 नंबर का, वो भी अनंत गुणा विशुद्ध है। दूसरे समय में मैक्सिमम किसका है नंबर 928, उससे तीसरे नंबर का 929 है, वो उससे भी अनंत गुणा विशुद्ध है। यानी कहीं भी ऊपर और नीचे मैचिंग नहीं होगा, यही बात यहां पर है। प्रत्येक समय में क्या हो रहा है, एक जीव की अपेक्षा विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ रही है, बस इतना ही। अब इसके कारण क्या होते हैं उसको हम देखेंगे।
अपन ऐसे कह सकते हैं अंतःकरण में विशुद्धि समान होगी और इसमें असमान रहेगी?
नहीं, अधप्रवृत्त में भी प्रत्येक समय में परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध हो रहा है, परंतु उसमें नीचे और ऊपर अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा समानता हो सकती है। अन्य अन्य जीवों की, एक जीव की अपेक्षा समानता का प्रश्न ही नहीं, एक समय में एक परिणाम है, और यहां पर अन्य अन्य जीवों की समानता नहीं होगी। कहां? भिन्न समयों में समानता नहीं होगी। एक समय में समानता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब ये जो 2-4 से उसके आगे हम देखेंगे, यहां जो 4 आवश्यक होते हैं उसकी बात हम देखेंगे। यहां पर हमने देखा था अध प्रवृत्त करण में जो 4 आवश्यक होते हैं, विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है, स्थितिबंधापसरण होता है आदि आदि, वे आवश्यक यहां भी होते हैं। और इन एडिशन कोई अन्य भी आवश्यक होते हैं जो गुण श्रेणी वगैरह वगैरह, उसकी बात अभी हम यहां देखेंगे। देखो मिला है आपको यहाँ 129 पृष्ठ है, तो दो चैप्टर
126।
हाँ, अब यहाँ जो 4 आवश्यक होते हैं उसका स्वरूप देखते हैं। यह बात समझ लो, अधप प्रवृत्त करण में बताए हुए 4 आवश्यक तो यहाँ भी होते हैं। कौन से 4 आवश्यक? विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है, स्थिति बंधा प्रसरण होता है, अप्रशस्त कर्मों में अनंत गुणा घटता हुआ अनुभाग बंद होता है, प्रशस्त कर्मों में अनंत गुणा बढ़ता हुआ होता है, प्रशस्त में 4 स्थान वाला और प्रशस्त में 2 स्थान वाला, ये बातें यहां भी होती है। इन एडिशन क्या होता है उसको देखेंगे। उनके साथ साथ और भी 4 बातें होती है, उनकी चर्चा करते हैं। उनके नाम तो हमने पहले देखे ही थे, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। ये कांडक घात का ही स्थिति खंडन भी उसका नाम है, कांडकोत्करण भी कहते, अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। अधप्रवृत्तकरण के समान स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है। अब ये गुणश्रेणी क्या होती है उसको जरा हम देख लेते हैं। श्रेणी अर्थात पंक्ति, निषेकों की पंक्तियां, लाइन्स जो कोई है। कर्मों की निषेक रचना में हमने आकृति द्वारा एक एक समय के एक एक निषेक को बताया था। हमने आड़ी लाइन से देखा था ना, ये पहला निषेक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा निषेकों के जो ग्रुप्स है वहां पर। वर्तमान समय का निषेक सबसे नीचे आड़ी रेखा द्वारा बताया जाता है, उसके ऊपर द्वितीयादि ने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से एक एक समय का निषेक एक एक आड़ी रेखा द्वारा बताया जाता है। ये किस तरह से उसका डायग्राम होता है उसके बताने के लिए ये डिस्क्रिप्शन लिखा है। उसमें वर्तमान समय से लेकर, यानी नीचे का निषेक उसको वर्तमान समय कहेंगे, एक आवली काल तक के निषेकों को उदयावली कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे का वर्तमान वाला निषेक है वो अभी उदय रूप रहता है, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा। आवली सुना है कभी नाम आवली? वो माप है, उसमें कितने समय होते हैं? जघन्य युक्ता संख्यात जितने समय होते, विशिष्ट पर्टिकुलर असंख्यात समय होते हैं। सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा है, हजारों आवली होती है एक सेकंड में, तो सेकंड का कितना छोटा हिस्सा होगा वो। तो इतने आवली काल में एक समय में एक एक निषेक, कैसे जो असंख्यात निषेक होते हैं उन सबको मिलकर नाम है उदयावली। उदय में आ रहे आवली समय प्रमाण निषेक है, उन निषेकों को क्या कहते हैं? उदयावली। उदय में आने वाले आवली प्रमाण निषेक जघन्य युक्ता संख्यात। असंख्यात के भेद बहुत है, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात, उसमें से ये पर्टिकुलर जो है प्रमाण जघन्य युक्ता संख्यात। देखो वर्तमान समय से एक आवली काल तक के निषेकों को उदयावली कहते हैं। ये अलग अलग पारिभाषिक शब्द यहां बताएंगे अभी। ऊपर के निषेकों को उपरितन स्थिति कहते हैं। अभी तक तो क्या बात थी कि नीचे के निषेक और ऊपर के निषेक, इतने वेरिएशन थे। उसमें नीचे का निषेक उसमें परमाणु ज्यादा है और ऊपर थोड़े थोड़े कम, इस तरह से ऐसी ही रचना अभी तक थी। अब इतनी विशुद्धि बढ़ रही है, अभी और कुछ विशेष बातें बढ़ने वाली है, कुछ होने वाली है। तो ऊपर के निषेकों को क्या कहा? उपरितन स्थिति। नीचे वालों को कहते अधस्तन और ऊपर वालों को कहते उपरितन। उपरीतन स्थिति, स्थिति यानी निषेक। परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अपकर्षण होता है। अपकर्षण का अर्थ है स्थिति कम होती है। सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, जो इतने सारे अंत कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म पड़े हैं, निषेक पड़े हैं एक एक समय में, प्रत्येक निषेक में से कुछ परमाणु अपनी अपनी स्थिति घटकर वो नीचे नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। जैसे सबसे ऊपर के निषेक है उसके परमाणु नीचे सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके नीचे के वो अपने नीचे के निषेकों में जाएंगे, उसके नीचे के वो अपने नीचे के निषेकों में जाएंगे। इसको कहते हैं अपकर्षण, यानी उनकी स्थिति कम होती है। ऊपर के निषेकों के परमाणुओं की स्थिति घटने के कारण सभी परमाणुओं की तो नहीं घटती, थोड़े परमाणु ऊपर से नीचे आते रहते हैं, वे नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। यहाँ ऊपर नीचे जो बताया जाता है वह समझने के लिए बताया जाता है। कर्म कहीं कतार से खड़े नहीं है। बहन उषा बहन, हाँ हाँ हाँ। अब ये जो नीचे आना उसको कहें अपकर्षित होना। अधिक स्थिति वाले परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था? नीचे ज्यादा थे, ऊपर छोटे टेपरिंग थे। अभी ऊपर के निषेकों में से नीचे आएंगे और उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कैसे होगा उसको अभी कहेंगे। अपकर्षित किए हुए परमाणु जिन विवक्षित यानी पर्टिकुलर पंक्तिबद्ध निषेकों में, यानी विशिष्ट नंबर ऑफ निषेकों में गुणित प्रमाण में दिए जाते हैं। गुणित प्रमाण में यानी अभी जितने पहले निषेक में दिए ना, दूसरे निषेक में असंख्यात गुना, तीसरे निषेक में और असंख्यात गुना, चौथे निषेक में और असंख्यात गुना, तो विशिष्ट नंबर ऑफ निषेकों में जो सब नीचे आए थे उसमें से उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। असंख्यात गुना, असंख्यात गुना, असंख्यात गुना होता है। उसको हम देखेंगे अभी कैसा होता है। उतने निषेकों की गुण श्रेणी रचना होती है। अब जरा हम देखते हैं, यहाँ पीछे के पृष्ठ पर है, ये जो आगे एक डायग्राम है देखो। पूर्व के निषेकों में वहां चार निषेक बताए, मिला क्या? अब ये ऊपर के जो निषेकों में से परमाणु आते हैं और इन चार निषेकों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हम देख रहे हैं। ऊपर और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी बात नहीं, इतने निषेकों में गुण श्रेणी होने वाली है, गुणित प्रमाण में श्रेणी, उसको कहेंगे गुण श्रेणी। तो जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल आए हैं परमाणु उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो अन्य निषेक थे उसमें से 85 परमाणु इसमें आएंगे और वो चार में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो चार निषेक है ना नीचे के, उसके ऊपर बहुत सारे निषेक है, उनमें से 85 परमाणु नीचे आए हैं और इन चार में वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, तो कैसे होगा? तो पहले निषेक में एक परमाणु
नीचे से पढ़ना,
दूसरे में चार गुना हुए ना, तीसरे में चार को चार गुना किए 16, फिर 16 को चार गुना किए तो 64, और टोटल कितनी आती है इसकी 85। दूसरे समय में क्या होगा, दूसरे समय में 85 × 4 इतने परमाणु नीचे आएंगे। परमाणु उतने ही नहीं आते, जो अपकर्षित होने वाले परमाणु वो भी असंख्यात गुना हो जाते हैं। पहले समय में 85 परमाणु आए थे, वो चार में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 1, 4, 16, 64। दूसरे समय में 85 × 4 परमाणु आएंगे, और जहां एक दिया था वहां अभी चार दिए जाएंगे। दूसरे निषेक में 16, तीसरे में 64 और चौथे में 256। ये तो दो ही समय की बात हुई, अभी उससे भी चार गुना परमाणु तीसरे समय में आएंगे, और उनका भी रिडिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से, चार के बदले यहां 16। तो देखो, नीचे के निषेकों में पहले ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग तो परमाणु थे ही थे, उसमें एक बढ़ा, फिर यहां चार बढ़े, फिर और 16 बढ़ेंगे, ऐसे अनेक समयों के मिलकर वो निषेक कितना बड़ा हो जाएगा। और जब ये निषेक उदय में आएगा तो हम कहेंगे यहां इतनी निर्जरा हुई, ख्याल है ना, इसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। गुणित प्रमाण में पहले निषेक में कितने मिले, दूसरे निषेक में और ज्यादा मिल गए, तीसरे निषेक में और ज्यादा मिले, चौथे में और ज्यादा, नीचे के निषेक गलते चले जाएंगे, ऊपर से और माल नीचे आते रहेगा। यह ऐसी गुणश्रेणी निर्जरा तो मोक्ष मार्ग में सतत चलती ही रहेगी।
पांचवें
गुणस्थान से तो कांस्टेंट होती है, अभी तो सम्यक्तो के काल में होती है, प्रथम उपशम सम्यक्तो के काल में ऐसी गुणश्रेणी निर्जरा होती है चौथे में, और कभी अनंतानुबंधी विसंयोजन है, जब जब विशुद्धि बढ़ती तब ऐसी होगी, चौथे में कभी कभी होगी, पांचवें में से ऊपर के गुणस्थानों में हर समय होती है।
तो अपने पास कितना कर्म है, क्यों गरीब समझते हो?
अभी निर्णय नहीं हुआ, परंतु अभी ये जीव नियम से सम्यक तो प्राप्त करने वाला ही है। ऐसे मिथ्या दृष्टि को निर्जरा नहीं होती, परंतु यहाँ ये निर्जरा का पूर्व तैयारी चल रही है और निर्जरा होने भी लगेगी। यहाँ तो मिथ्यात्व के परमाणु अधिक मात्रा में खिर रहे हैं, मिथ्यात्व के हो उदय ज्यादा परमाणु का होगा, परंतु अनुभाग घटकर उदय में आएगा। अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता है, यहाँ परमाणु ज्यादा खिरेंगे मिथ्यात्व के भी, क्योंकि अभी उपशम नहीं हुआ है, अभी तो आगे जाना है, अनिवृत्तिकरण बाकी है। अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीतेगा, फिर जाके अंतर पड़ेगा और फिर जाके उपशम होगा, तब तक ये गुणश्रेणी होगी। ये रचना सभी कर्मों में होती है, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, अंतराय में, मोहनीय में, सब में होती है, और सबके परमाणु अधिक मात्रा में खिर रहे हैं। अधिक मात्रा में खिरते हुए भी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता है, प्रशस्त का बढ़ता है। तो देखो कैसे यानी अनुकूल है ना जीव के लिए, बिल्कुल व्यवस्था है, और ये साइंस है, ऐसे पोल पट्टी नहीं है कि तुम ऐसा ध्यान करो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ जो कहते हैं ना कि अज्ञानी के एक समय में एक नीचे खिरता, अभी जब एक गुणश्रेणी हो रही है, हर समय इतना इतना माल नीचे आ रहा है पूर्व कर्मों का, और उतना उतना उसका खिर भी जाएगा, असंख्यात गुना खिरेगा एक समय में। तो कहते हैं अज्ञानी जीव करोड़ों भवन तक जितना तप के द्वारा एक एक समय प्रबद्ध खिरेगा, उतना ज्ञानी के एक समय में खिरेगा। हमें लगता है कि ग्रंथों में ऐसा ही लिख दिया है, हाँ, ज्ञानी की महत्ता बताने की, ऐसा नहीं है। और पांचवें गुणस्थान से तो ऐसी निर्जरा और बढ़ती है, छठे ऊपर के गुणस्थानों में ये जो अपकर्षण का प्रमाण और बढ़ता है, असंख्यात गुना बढ़ता है। आपने शायद तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा असंख्यात गुणा निर्जरा के 11 स्थान बताए। जब मिथ्यात्व में से प्रथम उपशम सम्यक्त होता है, उससे और असंख्यात गुणा निर्जरा, जब श्रावक होता है तब होता है उससे, है क्या? हाँ,
इधर
नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैं
नहीं सुन लो ना। हाँ,
बता दे आपको,
ये इसमें भी है, समय ज्ञान चंद्रिका में भी होगा। हाँ हाँ,
गुणश्रेणी वो कभी तक होती रहती है, आपने बोला अनुवृत्तिकरण तक।
हाँ, यहाँ तो गुणश्रेणी जो है अनिवृत्तिकरण तक चलेगी, और बाद में कोई बात नहीं, जरूरी नहीं अभी, और बाद में भी मिथ्यात्व की गुणश्रेणी रुकेगी, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय रुक जाने वाला है आगे चलकर, जब ज्ञात पड़ेगी तब। परंतु तब भी ज्ञानावरण दर्शनावरण में ये गुणश्रेणी निर्जरा चलेगी।
सिर्फ
आयु में तो नहीं होगी, मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी की रुकेगी, अन्य कर्मों की, अन्य चारित्र मोहनीय की, ज्ञानावर दर्शन मोहनीय की, वो वेदनी की, सबकी चलेगी, सभी कर्मों में निर्जरा होगी।
चौथे गुण स्थान के पहले वाला कार्य,
अभी मिथ्यात्व की बात चल रही है। हाँ,
तो ये खाली एक अंतर्मुहूर्त
अंतर्मुहूर्त के लिए है ये, पर क्योंकि उपशम सम्यक तो भी अंतर्मुहूर्त के लिए है,
वो भी यथा योग्य।
यथा योग्य
तो सबका अलग अलग रहेगा।
किसका? सबका,
मानो चार जीवों को होने वाला है सम्यक्त्व।
हाँ,
और उनकी जो अभी ये क्रिया चलती है तो वो सभी का अंतर्मुहूर्त अलग अलग
नहीं, अंतर्मुहूर्त एक ही होगा। परिणामों में वेरिएशन देखे हमने, और अनिवृत्तिकरण के बाद परिणाम में भी वेरिएशन नहीं रहेगी। अब ये अपूर्वकरण चल रहा है, अनिवृत्तिकरण से परिणाम एक समान, कौन से तत्वज्ञान की निर्मलता संबंधी परिणाम एक समान होगी उसके। अभी हो सकता है पूर्व में उसकी कितनी स्थिति कर्मों की थी उसमें कम ज्यादा होगा, परिणामों में कोई वेरिएशन नहीं होगी, उसी को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। देखो अभी हम, हाँ, वो अंतर्मुहूर्त का जो टाइम है वो सेम है सबके लिए।
तो फिर यथा योग्य क्यों बोलेंगे?
उसका टाइम आपको मालूम है क्या? आधा सेकंड है कि एक सेकंड है? जीवों के लिए यथा योग्य नहीं, वो अंतर्मुहूर्त का प्रमाण आप और हम नहीं जान, क्योंकि वो कितने वेरिएशन बताए,
संख्यात में है ना,
वो समय जो है वो पर्टिकुलर है, इसलिए उसके उसमें अपने माथा मारने की जरूरत नहीं है। वो दूसरा बहुत सारा है जिसमें हम माथा मारते हैं।
शंका होती है तो पूछते
नहीं, नहीं जरूर पूछना,
शंका है तो पूछते हैं, उसमें कोई बात नहीं। इनका ये कहना है कि उसमें समझने लायक बहुत चीजें हैं, जो जैसी कही है वैसा एक्सेप्ट कर लो,
कि हम अंतर्मुहूर्त समझते हैं ना, तो बाकी समझने जैसी बहुत अन्य भी चीजें हैं ना, उसको हम समझेंगे पहले। इन्हें हमने क्या देखा है यहाँ पर, गुणश्रेणी होती है ना क्या, पहले प्री एग्जिस्टिंग निषेक रचना तो थी ही थी, अब क्या हो रहा है, ऊपर के निषेकों में, प्रत्येक निषेकों में थोड़ा थोड़ा बंटवारा आ रहा है, और वो नीचे में आ मिलता है, वो कितने आते हैं क्या, सब कुछ गणित है उसका, विशिष्ट संख्या से भाग देना, कितने परमाणु नीचे आते हैं, वो नीचे आने वाले परमाणु में से कौन से निषेक में कितना बंटवारा होगा, पहले में कितना जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा, सब कुछ गणित है उसके, और ये सारे गणित सिखाए है हो ग्रंथों में। हाँ, उसकी तो बात यहां नहीं ली है, ये तो उदाहरण के तौर पर 1, 4, 16, 64 इतने बताए हैं। इसको कहते हैं गुणश्रेणी, गुणित प्रमाण में पंक्तियां बनती है निषेकों की, और हर समय में और असंख्यात गुना परमाणु नीचे आते हैं, उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, फिर और असंख्यात गुना आएंगे, ये जैसा चलता ही रहेगा। अभी उदीर्ण, हाँ देखो, अभी जो ऊपर से आ रहे हैं, अभी इसी के नीचे की फिगर देखना जरा, मेरे में 130 पृष्ठ है, आप में 127-128 होगा,
ये वाली,
ये जो जिसमें गुणश्रेणी उदयावली और वो लिखा है, है क्या उसमें, 128। देखो उसमें क्या है, पहले में कैसे थे, पहला निषेक लंबा बड़ा था और ऊपर टेपरिंग था, ऐसे त्रिकोणाकार रचना थी ना,
पिरामिड
की तरह। अब क्या हो रहा है, ऊपर के निषेकों में से आ रहा है, अब नीचे उदयावली में तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, आवली काल के निषेक छोड़कर उसके ऊपर गुणश्रेणी बताई है, वो गुणश्रेणी में जो परमाणु आ मिले हैं उसके कारण उसकी रचना ऐसी दिख रही है। तो गुणश्रेणी सब जगह नहीं होती, विशिष्ट नंबर ऑफ निषेकों में होगी, अंतर्मुहूर्त प्रमाण निषेकों में वो गुणश्रेणी रूप से दिए जाएंगे, उसके ऊपर क्या होगा, वो फिर वो पिरामिड जैसी रचना होगी, टेपरिंग है ऊपर। तो जो परमाणु अपकर्षण होकर उदयावली में दिए जाएंगे उसको उदीरणा कहते। आपका प्रश्न था ना अभी, उदीरणा होती कि नहीं होती। अपकर्षण किए ने ऊपर के निषेकों में जो परमाणु उदयावली में जाते हैं एक आवली काल उदय से लेकर, उसको उदीरणा कहते हैं। ऊपर जो जाते हैं यहां गुणश्रेणी भी होगी और उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसे, टेपरिंग टाइप में, उसको कहेंगे ऊपरी तन में दिया। यानी जो अपकर्षण हुआ परमाणुओं का, स्थिति घट गई, कुछ तो उदयावली में दिए, कुछ गुणश्रेणी में गुणश्रेणी रूप से दिए, असंख्यात गुणा क्रम से, और उसके ऊपर कम 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 इस तरह से, जिसको कहेंगे टेपरिंग प्रमाण में दिए गए। ये गुणश्रेणी रूप जो बीच वाले कुछ निषेक है उसमें ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका दृश्य ऐसा दिखेगा कि उदयावली में ऐसा, फिर वो गुणश्रेणी रूप से, और फिर ऊपर टेपरिंग। अब ये उदयावली के जो निषेक है, क्रम से नीचे का एक एक निषेक खिरेगा तो क्या होगा, ऊपर के एक एक निषेक में वो गुणश्रेणी रूप से दिए जाएगा, गुणश्रेणी उतनी की उतनी बनी रहेगी। अच्छा। अब मान लेते यहाँ चार समयों की बताई है, नीचे का एक समय खिर गया, ऊपर के जो उपकर्षण हुआ तो एक गुणश्रेणी में से एक निषेक उदयावली में आया और ऊपरी तन का एक निषेक गुणश्रेणी में आया, तो उसमें इसी तरह से उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ऐसा ये चलता रहा, तो नीचे नीचे के निषेक बड़े बड़े होकर खिरते जाएंगे और ऊपर का अपकर्षण होकर माल नीचे नीचे आता जाएगा। मोक्ष कहीं भी नॉर्मली भी, यहाँ तो मोक्ष मार्ग की निर्जरा की बात चल रही है, अदरवाइज जहाँ गुणश्रेणी भी नहीं है वहां भी ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आते रहते हैं, ऑर्डिनरीली भी थोड़े थोड़े, इतने ज्यादा नहीं। तो जो उदयावली में आकर मिलते हैं, हमने पहले देखा था ना, अपनी लाइन छोड़कर क्यू लगा है और अपना नंबर छोड़कर दूसरे तीसरे नंबर अपने फ्रेंड के साथ जोड़ दिया, मेरा भी टिकट निकालो, ऐसे यहां उदीरणा होती है। तो ये गुणश्रेणी क्या है, इसको हम ये तो गुणित प्रमाण में होती है, इसको कहेंगे गुणश्रेणी की रचना। और जब ये उदय में आकर खिरने लगेंगे तो इसको कहेंगे गुणश्रेणी निर्जरा। तो प्रश्न किसी का हो सकता है, अरे मिथ्यात्व का तो अभी उदय चल रहा है, अभी उदय मिटा नहीं है, नया बंद भी हो रहा है और उसमें भी गुणश्रेणी रचना हो रही है और उसमें भी गुणश्रेणी निर्जरा हो रही है, तो मिथ्यात्व अधिक मात्रा में खिर रहे है मिथ्यात्व के परमाणु, तो जीव को मिथ्यात्व बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ घटेगा, क्यों, परमाणु कितने उदय में आते उससे कोई नहीं लगता, उसका अनुभाग किस रूप में उदय में आ रहा है, तो अनुभाग अनंत गुना घटकर उदय में आ रहा है, तो मिथ्यात्व कम हो रहा है, उसका अनुभाग घट रहा है और परमाणु ज्यादा निकल रहे ना, अच्छा है ना ये, क्योंकि परमाणु जीव को छोड़कर चले जाए तो अच्छा है, तो सभी परमाणु अधिक मात्रा में खिर रहे, गुणश्रेणी सभी कर्मों में हो रही है, तो उसका फल देखो, अशुभ कर्मों का अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है, शुभ कर्मों में भी बढ़कर उदय में आ रहा है, तो जीव के कल्याण की बात है, वो तो
फेवरेबल
है। हाँ।
जैसे ऊपर पांच चकली होगी तो नीचे छह हो जाएगी,
ज्यादा पानी
चकली चकली
अहमदाबाद की भाषा है चकली,
हमने नल लगाए थे ना ऊपर,
वो जाड़े लग गए अभी, पहले आधा इंच का था अभी डेढ़ इंच का लग गया,
डेढ़ इंच तो पानी ज्यादा जोर से बह रहा है नीचे से, ऊपर से तो अभी एक एक नल कम हो जाएगा। देखो एक दो मिनट में कम बंद करते हैं हम अभी। हाँ अब यहाँ आगे की लिखा है कि उसके ये सारा गणित है, परंतु अभी उसकी बात देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो हमने काल्पनिक गणित देखा है उससे अपना काम हो जाएगा। यही बात है आगे। ये छोड़ाला की लाइन यहाँ लिखिए, देखो जो मैंने अभी बताई थी ना, उसको पढ़कर फिर हम देखते। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञान के बिना यानी आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों में करोड़ों भवों में तप तपने से जितनी निर्जरा होती है, तप से जितनी निर्जरा होती है, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति तय सहज टरे थे, और ज्ञानी के एक क्षण में हो जाती है। ज्ञानी की एक समय में जितनी निर्जरा होती है उतनी निर्जरा अज्ञानी के करोड़ों भवों में तप करने से भी नहीं होती है, क्योंकि केवल शुभ परिणाम करने से अर्थात शुद्धोपयोग रहित व्रत तप करने से गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। उसका तो एक एक निषेक केवल खेरेगा, गुण श्रेणी उनमें उसकी ऐसी अपकर्षण से निर्जरा नहीं होगी। वहां तो एक समय प्रबद्ध इतनी ही निर्जरा होती है जिसे स्थिति पूर्ण होने पर होने वाली सविपाक निर्जरा कहते। विपाक इन्हें फल देना, कर्म की स्थिति पूरी होने पर जो खिर जाते हैं वो एक समय प्रबद्ध इतना खिरता है, और अभी जो हमने देखा था गुणित प्रमाण में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा खिरता है, और वो अज्ञानी को तो नया बंध भी उतना ही ज्यादा होता है, तो अज्ञानी के संवर नहीं पाया जाता। अब हम यहीं रुकते हैं, बाकी बात हम शाम को देखेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।